नमस्कार आदाब सत श्रीकाल श्रोताओं, मैं रफीस आजा मंच मोबाइल वाणी से आज आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ सीधे पुणे से जी जुड़े हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, खास करके जो मजदूर साथी फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी क्या स्थिति है। स्वागत है साझा मंच में विजय जी आपका, और क्या स्थिति है पुणे में अभी और पूरे महाराष्ट्र की जो स्थिति दिखाई जा रही है, क्या हालत है वहाँ?
ओके, महाराष्ट्र की अगर सिचुएशन बोली जाए तो फिर महाराष्ट्र में बहुत से प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है समय पर, और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में ऐसे लोग कहते हैं कि एक अस्पताल में वे जाते हैं तो वहां पर वे पॉजिटिव आते हैं, और वही टेस्ट दूसरे अस्पताल में की तो वो वहां पर निगेटिव आती है, तो ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है।
तो ये जहां आप पुणे से बोल रहे हैं, तो पुणे में खास करके क्या स्थिति है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी जो एक डर है कि अब किसी तरीके से यहां से निकलना है, गांव में जाना है, तो महाराष्ट्र में अब ये किया गया है कि जो है कोविड सर्टिफिकेट लेके आना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आ रहे हैं या निकल रहे हैं वहां से, तो जो जब वो चेक करा रहे हैं तो क्या क्या एक ही अस्पताल में जब चेक कराने वाला एक व्यक्ति है तो अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, इस पे कुछ सरकार का क्या एक्शन है या स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या दलील दे रहा है इस बात पे?
इस पर ऐसा बोला गया है कि वे लोग कुछ उनका सुनते ही नहीं है, कि ये बोल रहे हैं कि नहीं, क्या जो रिपोर्ट आ गई है वो रिपोर्ट आपको स्वीकार या करनी ही पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हो।
तो
लेकिन ऐसा उनको उल्टा सवाल अगर पूछा गया तो उनके सुनने की कुछ भी तैयारी नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इतना प्रॉब्लम है कि जैसे कि लोग अभी जाने आने में उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, और ट्रेन चालू है लेकिन महाराष्ट्र की पुणे में जो लोकल सर्विसेस है या स्टेट ट्रांसफर है वो बंद है पूरी तरह से।
तो ये स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है कि जो इतने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोई अलग से कोई इंतजाम किया गया है या सरकार क्या कदम उठा रही है प्रवासी मजदूरों को लेके वहाँ पर?
प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई भी सरकार का कुछ ऐसे प्रावधान या ऐसा कुछ बजट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि लोग अभी ट्रेन से सफर कर रहे हैं लेकिन जब ट्रेन से यात्रा कर रहे तो सोशल डिस्टेंस या उनके आवाजाही के आने जाने के लिए कुछ अलग सा प्रबंध, ऐसा कुछ भी इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और सोशल डिस्टेंस की तो आपको पता है, जब भीड़ हो जाती है तो पूरी धज्जियां ही उड़ जाती है।
अच्छा, जो एक खास करके मजदूरों में एक डर बैठा है कि अगर उनका कोविड पॉजिटिव भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं बचते दिख रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मुझे जो है सरकार की तरफ से जो मदद मिलेगी या मुझे कहीं अस्पताल में बुला लिया गया, तो ये एक डर बैठ रहा है कि हम बच के आना वहां से मुश्किल होगा, कुछ है नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति पुणे में भी बनी हुई है कि लोग बचना चाह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी महकमा है उससे, क्योंकि वहां पे व्यवस्थाएं एकदम लचर हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो संभाल सके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा, तो क्या वहां ये चीजें देखने को मिल रही हैं?
हाँ, पुणे में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी कुछ लोगों को हमने पूछा कि क्या आप वैक्सीन लेना चाहोगे क्या, तो उन्हें यह डर है कि भीड़ में अगर गए तो भी उन्हें कोरोना हो सकता है। दूसरी बात, अभी एक सामने आ गई कि जो वैक्सीन देते थे ये पहला डोज जो है वो 28 दिन के बाद लेना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनके पास वैक्सीन का जो स्टॉक है वो बहुत सीमित है, इसके लिए उन्होंने वो 56 डेज के बाद लेने के लिए किया है। तो इसके वजह से लोगों में डर है कि उन्होंने ये जो किया है तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में अगर हमें कोरोना हो गया तो हम क्या करेंगे, तो यह ऐसे बहुत सी लोगों के मन में शंकाएं हैं और इनका पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ, इसके वजह से लोग अभी शंका में है कि मैं अस्पताल में जांच करने के लिए जाऊं या न जाऊं, अगर जांच करने के लिए आ गया मैं तो मेरी केयर कौन लेगा, क्योंकि जहां पर लोग एडमिट है उनको ही जगह नहीं है तो उनको वे कहां शिफ्ट करेंगे। तो इस हाल में अभी महाराष्ट्र में तो बहुत से लोग ऐसे प्रॉब्लम में है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहां पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बेड अभी रिजर्व नहीं है, किसी लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए दवाइयाँ मिल रही है, लेकिन जो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि आप बाद में आओ या फिर आपका इंतजार करना पड़ेगा। और अभी तो नासिक में एक ऐसा हाल हुआ कि 22 लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, कि 22 जो लोग हैं वे एक साथ ही मर गए।
तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो क्या वहां पर ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटने नहीं पा रही है, या जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में किसकी तरफ से मुहैया हो रही हैं, क्या स्पेशल कुछ वहां के लिए कोई प्रावधान है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ज्यादा तरजीह दी जाए, उनको वरीयता दी जाए? क्यों ऐसा सिस्टम हो गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं लेकिन जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है वो वहां नहीं जा सकता, वहां के खर्चे जो है वो नहीं झेल सकता? तो ऐसी स्थिति में जो लोग जा सक रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो क्या वहां की स्थिति काफी अच्छी है प्राइवेट हॉस्पिटल की?
और प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वो कैसे काम करते हैं कि जैसे कि दाम देख के काम किया जाता है, जितना आदमी बड़ा उसका काम जल्दी किया जाता है, साधारण आदमी है तो उसका आय कम है तो उसके प्रति ऐसा ही ध्यान दिया जाता है। और सरकारी अस्पताल में तो आपको पता है कि वहां पर सब कुछ सुविधाएं होकर भी कभी कभी लोग काम में लापरवाही बरतते हैं, तो
तो जो
महाराष्ट्र में ऐसा सिचुएशन है अभी।
तो सरकार जो दावा कर रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने ले लिया है, तो लेने का क्या मकसद है उसका? क्या एक आम आदमी को उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह मिल पा रही है, सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या ये दावा खोखला है सरकार
मोस्टली
का?
क्या हो रहा है कि ये दावा बेसिकली खोखला है। और दूसरी बात यह है कि जो अस्पताल है यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे कि किसी ना किसी से नेता से ही वे अस्पताल जुड़े हैं, तो इसके लिए क्या हुआ है कि वहां पर जो सुविधाएं हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन वे सुविधाएं कैसी दी जाते हैं कि जिसके पास क्रय शक्ति ज्यादा है उसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, और जिसकी क्रय शक्ति कम है उसको ट्रीटमेंट उसके हिसाब से दी जा रही है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान हो वो सब इंसान समान ही होने चाहिए, लेकिन अभी महाराष्ट्र में तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिसके पास जितना पैसा उसको उतने अच्छे ट्रीटमेंट।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सावरकर जी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुणे से विजय सावरकर जी को, जो बता रहे थे कि क्या हालत है पुणे की, और खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी क्या हालत है। यदि आप भी कोई बात, कोई खबर यहाँ पर साझा करना चाहें तो साझा मंच मोबाइल वाणी खबर सुनने के दौरान नंबर 3 दबाकर अपनी बात साझा करें। धन्यवाद।